नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भी इसमें सहयोग की अपील की।
हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडब्रू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बाद भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया में पेट्रोल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए आज से सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय से इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी लेने और रिमाइंडर भेजने तथा प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिन के अंदर उनका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि जमीन निबंधन कराने के समय में आवेदकों को 13 प्रकार की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जमीन की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण निबंधन के बाद विवाद नहीं हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट तैयार की गई है, जिसके जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राज्य की सभी चीनी मिलों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर सर्विस CHCS संचालित करना होगा। वर्तमान में सिर्फ 3 चीनी मिलों ने CHCS स्थापित किए हैं। गन्ने की खेती के रकबा विस्तार के उद्देश्य से चीनी मिलों को CHCS की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार कृषि विभाग और जीविका द्वारा स्थापित CHCS में गन्ना फसल से संबंधित विशेष कृषि यंत्रों की कमी भी चिन्हित की गई है। गन्ना विभाग के अधिकारियों और चीनी मिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गन्ना संबंधित कृषि यंत्रों की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, साथ ही इन सूचनाओं के आधार पर शीघ्र समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में मॉनसून से पहले 45,000 पुल पुलियों की जांच की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार जांच का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया है। इस विशेष निगरानी अभियान में अनियमितता या गड़बड़ी करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू PNG की कीमत 50 पैसे बढ़कर 49.94 रूपये हो गई है, वहीं व्यावसायिक PNG की कीमत बढ़कर 93.27 रूपये प्रति SCM हो गई है। औद्योगिक PNG के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इधर CNG की दर 1 रूपये बढ़कर 89.90 रूपये प्रति किलो हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। श्री शाह ने संभावित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से देश के केंद्र शासित और राज्य सरकारों को बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल बिहार से बेंगलुरु के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 14 मई से 12 जुलाई के बीच सहरसा और यशवंतपुर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पूर्णिया कोट और सहरसा से आनंद विहार के लिए चल रही ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन के पास स्थित पश्चिम संपार फाटक को बंद कर सो जाने वाले गेटमैन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एसटीएफ की टीम ने बक्सर जिले से एक व्यक्ति विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी निवासी विशाल पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और पीए हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने विशाल की गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया है। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कहा है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए इन योजनाओं का लाभ समाज के अंति व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र शिवहर पहुंचने पर डॉक्टर श्वेता ने यह बात कही। पूर्वी चंपारण जिले में जीआरपी ने तस्करी के लिए भागलपुर ले जाए जा रहे 21 बच्चों को मुक्त कराया है। रेल पुलिस थानाध्यक्ष भरत प्रसाद ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीडी चौक के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 41 लीटर नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात रायपुर में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दिन के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात का प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के तबादले पर लिखा है, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अफसरों को नई जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में निगरानी कैडर समाप्त, बिहार पुलिस में समायोजित होंगे इसके अधिकारी। प्रभात खबर ने नेपाल सरकार की ओर से जारी एक आदेश पर लिखा है, नेपाल जाना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य, सीमा पर बढ़ी चौकसी। दैनिक जागरण लिखता है, तमिलनाडु में विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, ईरान ने समुद्र में 3,000 बैरल तेल बहाया, देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ी। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार के सभी जिलों में पीपीपी मोड पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन, हर जिले से पटना के लिए चलेगी सरकारी बसें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।